अच्छा, ये सब क्या है जो तुमने उल्टी सीधी बातें अपने बाप के बारे में शाहीन से की हैं?
एक मुद्दत बाद मिले हैं, अहवाल पुरसी तो करने दें, इसके बाद इल्जाम लगा लीजिएगा।
तुम मुझे जानते हो
अच्छी तरह
और ये भी जानते हो कि मैं किसी को भत्ता खोरी नहीं करने देता।
अब मैं बड़ा हो गया हूँ चाचा, और समझता हूँ कि रिश्वत को हदिया कहिए और भत्ते को चाय के पैसे, और ये भी समझ चुका हूँ कि आपको नाराज नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को जानने के बाद कोई भी काम मुफ्त करने को तैयार नहीं हूँ।
तू झूठी मूठी दास्तानें बनाकर मेरे बच्चे का नाम ले रहा है? हाँ,
ये वो पैसा है जो हमारे लिए कब का दास्तान बन चुका है चाचा जान। इजाजत दीजिए। सुना है रामीन साहब आपके राइट हैंड ये पैसा लेकर उड़ने वाले।
महमूद, अरे कुछ तो कहो, ये सब कहने के लिए आए थे क्या?
क्यों, तेरी जगह ले लूंगा क्या?
बेकार की बातें मत करो
शाहीन, तुम बाहर जाओ।
बाबा, ये बहुत बड़ा।
मैंने कहा बाहर जाओ, जब काम होगा बुला लूंगा तुमको।
ठीक है बाबा। मुझसे कोई काम हो तो मैं नीचे डॉक्टर के पास हूं।
फर्ज कर लो कि तुम्हें कुछ मालूम है कि जिसकी कुछ कीमत है मैं रामीन की जगह तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे कायल करो, कुछ तो बताओ। मसलन उस नशई और उसकी लड़की का क्या मामला है? वो कौन है? तेरा बाप उनके बारे में क्या जानता है?
ये तो कुछ ना हुआ चचा जान, अलबत्ता खुदा झूठ ना बुलवाए, अब्बा ने तो ये सब कुछ मुझसे नहीं कहा। एहतियात और हिफ्ज मा तकद्दुम के तहत और ज्यादा पूछ गछ करता तो शक पड़ जाता, लेकिन फिर भी इतना तो मालूम हुआ कि आपकी गर्दन बाप बेटी के मसले में, बल्कि लड़की के मसले में फंसी हुई है।
लड़की के मसले में?
बहादुरी और रजाई की तरह। इसमें भी खुलकर बात करें, जो कुछ शाहीन को कहा है उसकी परवाह ना करें, असल बात हम दोनों के दरमियान रहेगी।
असल बात क्या है? तुम्हारी असलियत यह है कि तुम अपने बाप की मुखबरी कर रहे हो।
शायद यहां पर भी कोई मुखबर हो जो चुपके चुपके खबरें ले जाता हो।
अब मैं तुमसे क्या बोलूं महमूद, कि सही बात करो, या ये कहूं कि रामीन की जगह तुम्हारी हो?
मेरा वक्त जाया ना करे ताजान, आप ही खुद कुछ कर लीजिएगा।
ठीक, 2 मिलियन का एक चेक लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन इस अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ मुझे जेल भिजवा सकते हो।
10 मिलियन, वो भी आज की तारीख का।
मैं खुद इन कामों का माहिर हूं, जो कि ये उसका काम है।
क्या उस खबीज को उठाकर तुम दफ्तर में ले आए? ये हम सबको आपस में लड़ा देगा। तुम नहीं जानते, तुम्हारे बाबा को पटा लेगा ये। रामीन, क्या हुआ मुझे बताओ, शायद मैं कोई काम अंजाम दे सकूं।
क्या?
कुछ तो बताओ। तुम्हारे बाबा तुम्हें कंपनी नहीं बनाने देंगे। मुझसे कहा गया है कि तुम अपने चाचा के जासूस हो। मैं सच कह रहा हूं।
क्या मैंने जो सुना वो कह दिया?
हाँ,
मैं खुद कुछ करता हूं।
तुम्हारी मजाल शाहीन, अपने लिए और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तुम क्या पियोगे?
मैं? आप तो जानते हैं कि माह रमजान।
मैंने कहा क्या पियोगे?
पानी।
इसके लिए पानी लाओ, अंदर आओ। तुमने उस नशई और उसकी बेटी के बारे में अपने अंकल से क्या कहा?
चाचा को कुछ भी नहीं।
झूठ ना बोलो, तुम्हारे बाबा सब जानते हैं। मेरे सुबह घर आने से लेकर हर चीज, यहां तक कि मेरे गवाह मरियम और फरीदा हैं।
ये मेरे पास रकम ईटने आया था,
मैंने आपके और शाहीन के हवाले कर दिया।
रामीन, मैंने पूछा कि नशई और उसकी बेटी के बारे में तुमने चचा से कुछ कहा है? क्या कहा है तुमने उनसे?
बाबा, मैंने चचा से नशई और उसकी लड़की के मुतालिक कोई बात नहीं की, और नहीं जानता हूं कि जो किसी को कुछ कहूं।
एक और होना चाहिए चचा के बेटे, ताकि बाद में खाने की हिम्मत ना कर सकूं।
तुम चुप रहो। बहादुरी की टांग किसने तोड़ी? सैयद गफूर की गाड़ी किसने चुराई? मेरी आंखों में देखो। तू ये समझता है कि मैं एक जालिम हूं और मुझसे छुपकर उनकी मदद कर रहे हो?
मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुमकिन है कि चचा ये समझते हो कि ये मेरा काम है।
वो क्यों ऐसा समझ रहा है कि ये तेरा काम है?
ताएजान, ये अब्बा मियां के साथ मिला हुआ है।
मगर मैं क्यों मिला हुआ हूं? घटिया आदमी, जब तू मुझसे पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त तेरी भतीजी मामा की हवाल पुरसी के लिए आई थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं सैयद गफूर और बहादुरी के सिलसिले में मेरा तो ताल्लुक नहीं है। चाहे तो जाकर पूछ लें मामा और फरीदा से। ये यकीनन खुद से कहानी बना रहा है, इसे तो पता ही नहीं ये मामला क्या है।
कहीं ये तो नहीं कहना चाहता कि मुझे अब्बा मियां ने यहां भेजा है? गौर से सुन, मैंने छुपकर दीना और अब्बा जान की बातें सुनी है। आखिर क्यों उन्होंने दीना को तुम्हारी मालूमात के लिए भेजा है?
बाबा जान, चचा आपके और बहादुरी के मामले से वाकिफ थे। मैंने भी झूठ और सच मिलाकर फोन पर कह दिया। यकीनन उन्होंने मेरी सदाकत के लिए दीना को घर भेजा होगा। फरीदे से पूछ लें, वो वहीं थी। वो बताएगी कि उसने क्या बातें की और मैंने क्या जवाब दिया।
क्या मैं अब जा सकता हूं?
अबे ओ चिमकादड़, यहां इसलिए आया है कि हमें आपस में लड़ाए और अपनी चांदी करे? तूने खुद अपने बाप से सुना है कि ये मुखबरी करता है या कोई और?
ये क्या कह रहे ताया जान? अब रामीन जासूसी करे या शाहीन, क्या फर्क पड़ता है? यानी आप भी ये कहना चाहते हैं कि अब्बा मियां ने सब ख्वाब में देखा है? और हाँ चचा जान, वो सैयद गफूर और बहादुरी से खुद जाकर मिले हैं। उन्होंने सारी बातें उन्हें बता दी हैं। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है। और माफ कीजिएगा, और कौन है जिसे इतनी मालूमात हो सकती हैं? और फर्म के कारोबार की क्या पोजीशन है? इसके अलावा कौन है जो छुपकर बखातिर खुदा उनकी मदद करेगा?
शाहीन, इस कचरे के डब्बे को उठाकर बाहर फेंक दो।
जो हुक्म आपका। चलो भाई।
शाहीन रुको,
हाथ हटाओ।
चेक जो मैंने तुम्हें दिया था वो वापस दो। मुझे लगता है कि तुम ये तो नहीं चाहते हो कि मेरा दामाद बैंक फोन करे और कहे कि चेक बुक खो गई है और तू जाली दस्तखत और धोखाधड़ी के जुर्म में जेल की चक्की पीसे।
ताजान, आपको पता है मैं सच कह रहा हूं, लेकिन अब हमारी और आपकी हमेशा की तरह खत्म।
मैं तो ये समझता हूं कि मेरे बच्चों के सर का एक बाल खलील के जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है के तरके से बहुत ज्यादा बेहतर है। तू ये समझता है कि माल और मनाल हराम है और वैसे ही हमसे ले उड़ेगा? अपने आप को बहुत होशियार समझता है तू।
मैं तो सोचता हूं कि हमारे रिश्तेदारों में लड़के अपने चचा पर चले गए ना मामू पर। हाथ हटा आदम फरोश।
ज्यादा बातें नहीं, मैं इसको यहां लेकर नहीं आया हूं।
बहुत हो चुका, काफी है, निकलो। चलो।
हाथ हटाओ बेगैरत आदमी,
बाहर निकलो।
अपने बाप के सामने अपने भाई की हैसियत कम करना चाहता है?
चल झूठ बोलता है, निकलो बाहर।
जरा हल्का हो, मैं खुद जा रहा हूँ। दीना से शादी करने के लिए मेरे पीछे नहीं आना, समझे?
अब इतना झूठ मत बोल, मेरा दिमाग मत पलटा।
मालूम है ताजान, एक दिन अपना भी आएगा। जिंदगी ने वफा की तो तलाफी हो जाएगी।
बाहर जाके तलाफी करो, बाहर निकलो।
तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम यहां आओ, आओ इधर बैठो। ये दीना से शादी का क्या मामला है?
कुछ नहीं, चचा से कहा था, उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं जाऊं?
नहीं, उस मक्कार के जवाब तो तुमने दे दिए। चलो मान लो कि सैयद गफूर की गाड़ी की चोरी इत्तेफाक, बहादुरी की टांग किसी ने तोड़ दी कि वो मुझ तक ना पहुंच सके, बच्चा समझा हुआ है तुमने मुझे, या ये समझते हो कि शाहरुखी से साजिश करके मैं उसकी बेटी हत्याना चाहता हूं तो तुमने उसको पैसा देना शुरू कर दिया?
तो आपने उसकी बातों को यकीन कर लिया ना?
यानी ये कहना चाहते हो कि बहादुरी की टांग नहीं टूटी?
उसकी टांग टूटने की कोई और वजह भी हो सकती है। तमाम चीजें रोजे रोशन की तरह जाहिर हैं। चाचा ने फोन पर मेरी बात का यकीन नहीं किया, उठ खड़े हुए बहादुरी से पूछने। वो कीना परवर महमूद जितना सैयद गफूर और शाहरुखी के बारे में जानता था उस पर हजार इजाफा करके चाचा के कान भर दिए होंगे। अब क्या मालूम कि बहादुरी को किसी गाड़ी ने नहीं मारा हो, चाचा को बुलाया गया हो।
यानी तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब बहादुरी का क्या धरा है कि कोई आया टांग तोड़ दी और सैयद गफूर की गाड़ी चोरी हो?
आखिर आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? आपको किस चीज ने परेशान कर रखा है, या ये कि ऐसा कोई वाकया हुआ भी है या नहीं? बाबा जान, आप जानते हैं चचा कभी झूठ नहीं बोलते, आप क्यों उन्हें और दूसरों को फोन नहीं करते?
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बाकी को तो मैं देख लूंगा, हत्ता खलील को जो मेरे लिए बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारी नजर जानना चाहता हूं कि अगर मैं शाहरुखी की लड़की से शादी कर लूं तो क्या है?
मुतमन रहें, मेरी कोई नजर नहीं है। मामा की वजह से ना कुछ बोलूंगा, ना कुछ सोचूंगा, ना रुकावट बनूंगा।
मामा की वजह से या किसी और वजह से?
बाबा, ये बातें मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है, मैं चलता हूं।
तुमने पानी नहीं पिया। तुम पियो या ना पियो, इस दफ्तर से जाने और अलग फर्म लगाने का ख्याल अभी अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी आंखों के सामने रहो। हां शाहरुखी साहिबा, शाहीन से कहो कि मुझे काम है, कहीं ना जाए। मालूजी को ढूंढो और उसे कहो कि वो आकर मुझसे मिले, और खुद तुम भी आओ, बहुत जरूरी काम है तुमसे।
कोई जरूरी काम?
सेमी, काजिम साहब का क्या हुआ? अंदर आओ, काम है।
शाहीन साहब, बराए मेहरबानी यहीं रहिएगा, अभी आपको बताती हूं।
तुम ये सोचते हो कि मुझे बुरा साबित करके तुम अच्छे बन जाओगे?
मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो।
या ये समझते हो कि चचा को बाबा से लड़ाकर तुम दीना तक पहुंच जाओगे?
मैं अपने बाप का बेटा हूँ, जो भी है उनके लिए है, उनको ये जानना जरूरी है कि इर्द-गिर्द क्या हो रहा है।
बाप का बेटा? अभी उसे ये मालूम नहीं कि वो इसे पसंद नहीं करते, बेटा इर्द-गिर्द की खबर लेने चला है।
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, आप चाहे तो अब्बू से पूछ लीजिए।
आहिस्ता बोलो।
खुश हो जाओ, चार जिंदगियों को खराब किया है तुमने। हाँ, मगर अब मैं यहीं रहूंगा। जाओ सैयद गफूर लिहाफ वाले और बहादुरी और दीना के दादा के साथ खुश रहो। मुझे उम्मीद है कि शायद तुम्हारे हाथ कुछ लग जाए।
अरे जाओ बाबा, मेरे लिए दीना या किसी और से भी ज्यादा अहम तरीन मेरे बाबा हैं। लो ये देखो, गेम भी हार गया मैं।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम।
मालू जी साहब आ गए?
ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। कुछ खबर हुई?
वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर है?
हशमतयान के बारे में।
यानी तुम नहीं जानते कि जब तक हम उसको फोन नहीं करेंगे वो हमें फोन नहीं करेगा?
क्या करूं जनाब, इस बुड्ढे ने तो हमें हाथों और पैरों से बांध दिया है।
जाओ, जाकर ढूंढो और उससे कहो कि मैं उससे दोस्ती चाहता हूं। तुम ऊपर आना और सुनो, हशमतयान की इसके साथ मीटिंग का वक्त तय कर लो, वो तुम्हारी आवाज सुनकर बात करना भी पसंद नहीं करता।
जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या है, आपको अच्छा लगा? तुम्हें मालूम है यह हाजी काजिम यहां क्यों आए हैं?
अरे भाई, पैगाम तक नहीं छोड़ा कि मुझे काम है।
तुम्हारे नाज नखरे कम नहीं होते? क्या जरूरी है कि मैं ये कहूं कि हशमतियान के लिए बबाल बन गया है, फिर आओगे?
अरे दरअसल जिस वक्त तुम्हारा फोन आया था उस वक्त मैं अपना बैग ढूंढ रहा था एयरपोर्ट पर, मैंने सुना भी नहीं।
एयरपोर्ट? एयरपोर्ट किस लिए गए थे?
ये बात हमारे दरमियान ही रहे, मेरे बेटे को जर्मनी में एक काम मिला है। मैं इस बात से परेशान था कि वहाँ जिंदगी में न जाने क्या होगा। उसकी माँ से मैंने कहा कि हम इसको छोड़ने चले जाते हैं, परेशानी भी खत्म हो जाएगी।
मुझे याद है कि तुम हज करने गए थे तब भी ऐसे ही चले गए थे, फिर क्या हुआ? लोग तो ऐसे हैं कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जाएं तो इतराते हैं और तुम जर्मनी जाने को छुपा रहे।
अरे तुम इन लोगों को बेहतर जानते हो, फौरन कहने लगेंगे कि पैसा कहां से आया, अय्याशी हो रही है और फिर नजरे बद भी तो लग जाती है। वैसे जलील साहब क्या साफ सुथरी सड़कें, देखकर दिल खुश हो गया।
हम एक दूसरे को देखकर सलाम करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। सच्ची बात है मैं तो इससे शर्मिंदा होता हूं अक्सर।
सच्ची बात है। खूब मसला क्या है, सच बताओ अशमतियान की कोई खबर है?
बताता हूं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं, मैंने हशमतियान से कह दिया है कि मैं और काजिम मजीद एक दो और होंगे। मीनासियान को देखने तक का हौसला नहीं है मुझमें। थाली का बैंगन, उस पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तुम्हें पसंद है, सही कह रहा हूं ना?
बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया।
लेकिन अभी मुझे कारोबारी नौयत का नहीं, कुछ और काम है। अब तुम दोस्ती का हक अदा करते हुए मेरा एक काम कर।
जरूर, जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं?
मैं ना करो। देखो काजिम, मुझे तुमसे रुपया नहीं चाहिए। कोई खिलाफ इशारा काम कहूं तो बेशक मना कर दे, पार्टनरशिप अपनी जगह, कोई दूसरा ये काम कर देगा कोई मसला नहीं। तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम खलील के जरा नजदीक हो।
सैयद खलील तुम्हारे भाई?
हाँ।
कोई नहीं इस घर में जो फोन उठाए। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जनाब वो उन्होंने भेज दिया। बीबी अब यहां फोन नहीं करना, मैंने कहा ना सौदा हो गया, चले गए। अजी बेवकूफ इंसानों, फोन उठाकर जवाब नहीं दे सकती हो?
मेरे किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है, बाद में हाजी साहब को फोन करके पूछेंगे कि वो खातून कौन थी जिससे कहा था कि बिक गई।
डरने की जरूरत नहीं, वो मालिक किस्मत है जो न सारी उम्र तुमने देखा न मैंने।
खुदाया जो कोई इसे खरीदे पत्थर का हो जाए।
दादा जान मैं फिर कह रही हूँ, ये 2 मिलियन बहुत होते हैं, प्लास्टर कराना जरूरी है।
मैं इस काबिल नहीं हूँ, देखो उसकी क्या हालत है।
मेरा काम कहना था, कहीं ऐसा ना हो कि दुकान भी बिक जाए और काम भी ना हो।
क्या हुआ, बेच दी?
तय हुआ है, फोन करेंगे फिर बताएंगे।
दुकान के लिए किसी ने फोन तो नहीं किया?
नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, और अगर करे भी तो मुझे इससे क्या।
अरे बाबा दादी फिर शुरू हो गई।
ला इलाहा इल्लल्लाह। महमूद घर पर है या चला गया? महमूद जाग रहे हो? सूरज डूब रहा है, नमाज कजा हो रही है।
मैं नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, 6-7 सालों से नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ और ना रोजा रख रहा हूँ, ना सच कहता हूँ, चोरी करता हूँ, जो आपके खुदा ने करने को कहा नहीं करता। ठीक है, आराम मिला? सूरज को उधर से इधर होने दो कि ठंडा हो जाए। अगर आपको नागावार है तो मैं अपना सामान लेकर दोस्तों के घर चला जाऊंगा। अब्बा जान मैं हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा ही था। मैं किन लोगों के मुंह लग रहा हूँ, किन के मुंह लग रहा हूँ मैं? अगर यही मुसलमान होना है तो बेहतर है मैं काफिर ही रहूं।
चाचा ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं क्या कह रहा हूँ या तुम क्या कह रहे हो शैतान?
ऐसा बोलो मोहल्ले वाले कहीं सुन न ले।
नहीं बोलूंगा, सब सुन ले, सारा आलम सुन ले, जान ले के सारी उम्र का नमाज रोजा अब दो उबैद होना ये सब क्या है। इसके अलावा कुछ नहीं कि चंद मजलूमों का हक, उस बेचारी औरत का हक, उस धोखाबाज पोती का हक, सारे हुकूक उठाकर खुदा से बेखबर लोगों के हवाले कर दिया जाए ताकि अपनी गर्दन बचाई जाए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में हूरों से मुलाकात हो सके। जाने भी दिए अब्बा जान, दूसरों का बेड़ा गर्क करके अपनी दुकान चमकाने का क्या फायदा, अपना भला बाकी जाए सब भाड़ में। इसके अलावा कोई और बात हो तो मेरे मुंह पर थूक दिएगा।
बहुत बेशरम है आप। मैं बताऊं कि कहां थे कि खाली हाथ पलटाए गए? तीर निशाने पर नहीं लगा तो मेरे और दादी के हुकूक की फिक्र में लग गए।
कहां गया था? हाँ, रामीन के पास गया था। कहीं ऐसा तो नहीं शाहिन की तरह वो भी बुरा हो गया और हमें खबर भी नहीं?
दादा जान ठहरिए, इनको जवाब तो दीजिए। ये दुकान मेरा माल है, मैं इसको बेचकर पैसों को आग लगाऊं या बांटूं? मेरे और दादी के लिए देख से ज्यादा चंचा गरम होने की जरूरत नहीं।
अगर हिम्मत है तो अपने दिल की बात बोलो। किसी को पसंद करती हो मगर उसका घर में नाम लेना नहीं चाहती। मालो मता तक पहुँचने के लिए तूने क्या क्या साजिश की बोलो।
बेशर्म हो या झूठे, अगर आप में भी हिम्मत है तो कहने की जो पैसा उड़ा चुके उसका अफसोस है। दादी से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये दुकान मेरा माल है। कल ही जाकर उस दुकान पर अपनी मिल्कियत का इश्तेहार शाया करवा दूंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है और कौन रोक सकता है।
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
توسين یہ قرآن کی روشن آیات ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناؤ سچ یہ ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں فرعون سرزمین مصر پر حکومت کرتا تھا وہاں کے عوام کو طبقوں میں بانٹ دیا تھا اور ایک طبقہ عورتوں کا قرار دیا لوگ جن کے لڑکوں کا سر کاٹ دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا
آپ یہاں ہیں اور میں گھنٹوں سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں پھر سے کام میں لگ گئے ٹھیک تو ہے نا دادا جان ٹھیک تو ہے نا
خدا کا شکر ہے
خدا کا شکر دیکھیے میں کسی کی جانب سے آئی ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ کی خلوت میں مغل ہو رہی ہوں دیکھیں تو انہوں نے سیا ہے ان کے آنے میں حیا مانے ہوں گے مگر معلوم ہے کہ ان کے فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے انہوں نے سیا ہے تاکہ شوہر کے خدائی کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں
خدا قبول کرے
واہ واہ کیا ذوق و شوق ہے لگتا ہے اذان کے بعد تک یہیں رہوں تار کے بعد اوپر جاؤں اور ان کے لیے جھوٹی موٹی باتیں بتاؤں دو باتیں اس میں اضافہ ہو سکتی ہیں
باہر جاؤ تم کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے دینا
ارے اگر ایسا ہے تو مجھے بھی آپ کا حوصلہ نہیں میں کچھ نہیں کہتی تو آپ بولے چلے جائیں جی نہیں کیا کہنے پچھلے سال کے ماہ رمضان کے ہر کینیا و قدورت کو خدا کی مہمانی کی نظر کر دیا میں قربان جاؤں کہا اور وہ گزر گیا اس کے بعد پھر وہی جو تھا
اب کیا چاہتی ہو تم دینا ناچوں یا زبردستی ہنسوں
جی نہیں اگر مرد خدا ہیں تو وہ کام کریں جو درست ہو میں تو کہتی ہوں ایسے اوقات کو در و دیوار پر اجنبیوں کی طرح دیکھتے ہوئے تلخ نہ کریں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ محمود صاحب کو اپنی فکر لاحق ہے
تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی اوقات کو محمود کی وجہ سے تلخ کر رہا ہوں
جب آپ خوشحال ہو جاتے ہیں تو قافیہ ایسا ہو جاتا ہے الحمدللہ
نہیں میں گہری فکر میں ہوں
آخر کس فکر میں غرق ہیں
شک کر رہا ہوں جو کام لازمی ہے اسے انجام دوں یا نہیں جانتی ہو کیا
محمود اور دیگر کی باتیں کیا ہیں
کیا میں جلیل کے کاموں پر پردہ ڈال رہا ہوں اور تم ایک تم ہو جو سہن کے بیچ میں کھڑے ہو کر صرف اس لیے کہ میں ناراض نہ ہوں داد و فریاد کرتی ہو میری دکان ہے میں بیچوں یا نہیں اب آ گئی ہو اور قرآن کے ظاہر پر واہ واہ کر رہی ہو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو آخر کیوں تم میرے ہر سانس پر سنقص کرتی ہو
دادا جان معاف کیجیے گا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں مقروض ہوں آپ کی پشت پناہ ہی چاہتی ہوں
میں جانتا ہوں نہیں کہوں گا اب شک کر رہا ہوں
ارے آخر کیوں چچا محمود کے شور شرابے کے بعد یہ شک پیدا ہوا اس پر آپ کو بھی شیطان نے بہکا دیا کہ مجھے اور دادی کو آپ اپنی عافیت پر قربان کر رہے ہیں اور اب بہانے کی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے یہ کہیں کہ مجھے تمہاری دکان نہیں چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ماہ رمضان میں بھی یہی انصاف ہے
ایک بات کہوں بے انصاف تم خود ہو لا الہ الا اللہ
कौन? दादा जान, आपसे काम है।
मुझसे? कौन है
जनाब? गाड़ी गलत जगह पार्क की है, ज्यादा देर अहले खाने के लिए मुजाहिमत का बास नहीं बनूंगा।
क्या गली के कोने पर नहीं खड़ी की?
नहीं भाई, दो तीन गलियां पहले खड़ी की है। मैंने सोचा यहाँ खड़ी करूंगा तो सबब गइबत बनूंगा, और नजरें बंद की तो है, ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई।
इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आप तशरीफ लाइए।
या अल्लाह, हम हमेशा से आपके लिए बाहर से सहमत हैं।
मैं अभी आता हूँ।
कहाँ जनाब?
आपके लिए कुर्सी ले आऊं?
भाई तुम्हारी जान की कसम, मुझे काम है, दो बातें करूंगा और चला जाऊंगा। आओ बैठो।
अरे मेरी जान की कसम खाने से क्या होगा, इफ्तार नजदीक है, हमें भी सवाब में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह, हमारी याद कैसे आ गई?
बड़े अरसे से तुम्हारी याद ने दिल को परेशान कर रखा था। जब फर्म में आए थे तो दीदार की तौफीक ना हो सकी, बहुत बुरा हो गया हूँ। बदबख्ती के और भी असबाब हैं।
क्या असबाब हैं?
अब क्या कहूँ?
अपनी बात कहो।
हाँ जी, देखो भाई, माह मुबारक है और मैं भी झूठ नहीं बोलता। जानते हो एक उम्र साथ गुजारी है, तुम जानते हो तुम मुझे कितने अजीज हो, मगर इस दफा तुम्हारे भैया जी ने मुझे भिजवाया है ताकि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें समझाऊं।
ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं मालूम तुम्हें क्यों, क्या कोई और राजदार नहीं मिला कि तुम्हें ये काम सौंपा है?
दिल बर्दाश्ता ना हो जनाब, वो समझता है कि मैं तुमसे बातें उगलवा लूंगा।
अब क्या कहा है तुमसे?
कुछ कहा तो है मगर।
क्या कहा है हाजी?
जबान खुलना नहीं चाहता, लेकिन उसने मुझसे इस बारे में कहा कि तुम्हारा इस बारे में क्या नजरिया है, दुकान क्यों बेचना चाहते हो?
मगर क्यों?
अगरचे मैंने ज्यादा बातें नहीं मानी, मगर कहा कि तुम दुकान बेचकर इसका पैसा चंद मुफ्तखोरों को देना चाहते हो। अलबत्ता इसने अपनी जबान इस्तेमाल की थी, तुम तो अपने भैया को अच्छी तरह जानते हो।
उनके नाम भी लिए?
बहादुरी, सैयद गफूर और दीगर।
उन्हें ये सब कैसे पता लगा?
मुझे ये सब तो नहीं मालूम हाजी, लेकिन क्या वाकई ये सब दुरुस्त है?
यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कुछ खबर नहीं बहादुरी की भी?
झूठ नहीं है कि बहादुरी के बारे में कुछ सुनगुन है, लेकिन तुम तो बेहतर जानते हो कि हम किस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम तो जानते हो नफसा नफसी का दौर है, पैसे की दौड़ का दौर। आज इस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे को धक्का देते हैं। एक रात में करोड़पति होने की ख्वाहिश आखिर क्यों? आखिर ये जेलें क्यों भरी हैं? हम इस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं कि लोगों पर एक रात में हज वाजिब हो जाता है और एक ही रात में वाजिबुल सदका हो जाते हैं। इसके बरक्स भी होता है। सैयद साहब, हम इस दौर में हैं कि कहीं एक दूसरे से पीछे ना रह जाएं, और इस फिक्र में कुछ पीछे ना रह जाएं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। मैं खुद जब अपनी गाड़ी पर रोड पर निकलता हूँ तो लोग टेढ़ी निगाहों से देखते हैं, तो मुझे शक होता है कि कहीं हक को नास तो नहीं खाया। तुम तो जानते हो कि मैं हराम को हलाल नहीं करता हूँ, अगर हो जाए तो जमीर का क्या करूंगा, लेकिन मैं जलील की गर्द तक पा नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ और सुनता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के अफराद, रिश्तेदार, जानने वाले मुझे हराम खोर समझते हैं। बखुदा मैं कहना नहीं चाहता कि जलील की सब बातें जानता हूँ, लेकिन तुम बहुत सादा हो, बहुत सादा। मुमकिन है लोग इसी वजह से तुम्हारे पास आकर अपनी बातें करते हों और तुमको अपना हमनवा बनाते हों, मगर सच ये है कि जो तुम खुद भी जानते हो, और तुम्हारा भाई जल्दी गुस्से में आ जाता है और हत्थे से उखड़ जाता है।
मुझे मालूम नहीं था कि वो जानते हैं कि दुकान बेचकर मैं रुपया कहाँ खर्च करना चाहता हूँ।
क्यों ना मालूम हो, और मेरा ख्याल नहीं कि जो कुछ तुमने सुना है वो सब सच भी हो, गलत फहमी भी हो सकती है।
क्यों, तुमसे क्यों कहा?
जनाब सच पूछो तो जो कोई भी जलील के साथ लगा हुआ है पैसों में खेल रहा है। जनाब इसका दिल नहीं चाहता कि कोई जलील के जूते में पांव डाले, चाहे डालने वाला अच्छा ही क्यों ना हो। तुम ख्याल करते हो ये सब करके कोई नेक काम कर रहे हो?
मुझे उसकी अच्छाई और बुराई से और किसी की पसंद नापसंद से कोई सरोकार नहीं।
मैं जानता हूँ मगर।
काजिम साहब मक्के में हमारे साथ रहा है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, सुनने सुनाने की बात नहीं है। अगर मैं सादा हूँ तो ये बात बहुत पुरानी है, क्या नहीं है?
अगर ये सब किसी से सुना है तो बस।
मैं चाहता हूँ कि खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाऊँ। उससे कहना कि वो जो मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था उसको समझने की कोशिश करे, तुम एक खैर का वास्ता भी बने तो अच्छा है, शायद वो ठीक हो जाए।
जाने भी दीजिए अब ख्वाब को, यानी आपने ख्वाब में देखा कि जलील किसी लड़की पर नजर रखे है तो तुम अपनी दुकान बेचकर इसके नशे ही बाप पर खर्च करना चाहते हो।
ये सब बातें भी उसने की हैं, अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं।
समझो कि दर्द दिल क्या है। भले मानस अगर अपनी इज्जत की फिक्र ना करता तो मुझे क्यों भेजता तुम्हारे पास?
मैं उसकी, अपनी और अपने वालिद की इज्जत आबरू की फिक्र में हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा।
मैं बातें बनाने के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं क्या कहूँ बड़े मियाँ। जब से तुम्हारा भाई बड़ा आदमी बन गया है, जमीन पर नहीं चलता। खीबत होती है तो हो जाए, तुम्हारे कानों तक भी ये बातें पहुँचना चाहिए। तुम्हारे भैया को ये बात पसंद नहीं कि वो कोई काम करे और कोई रुकावट बने। आशना लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है, दो नंबर अफराद इर्द गिर्द ज्यादा हो गए हैं जो हमेशा इसका ख्याल रखते हैं। क्या आप, तुम्हारे लिए खुदा की कसम खाऊं, मैं, तुम और वो लोग कि जिनका इसने माल दबाया हुआ है, सब मिल जाए तो एक लश्कर बनेगा। मगर फिर भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ लबों की जम्बिश से हम खाक के पेवंद हो जाएंगे, आसमान से जमीन पर पटक दिए जाएंगे। और अब तो हम अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते। सैयद साहब, तुम्हारे भाई इतनी ताकत रखते हैं कि एक पेट्रोलियम कंपनी का दिवालिया कर दें। अगर तुम्हारा भाई हट धर्मी पर उतर आए तो क्या करेगा? उसके लिए दुकान गिरवी रखना कोई काम ही नहीं है। तुम्हारी दुकान को ना बिकने देना कोई काम ही नहीं है। गलती ना करो मेरे भाई।
لا حول ولا قوة الا بالله الشيطان اللعين الرجيم کہاں سے کہاں پہنچا
سید خلیل میں نے یہ داستان اس لیے نہیں سنائی کہ
اس خدا الا شریک کی قسم میں نے صرف عرفات میں تمہارے ہوٹوں سے کسی کے جبروت کی باتیں سنی تھی عرفات کے علاوہ کبھی نہیں
حاجی میں نے تمہارے بھائی کو اپنے پر اور تم پر قیاس کیا ہے تمہیں باہر کی خبر نہیں اس کمرے میں بیٹھے ہو
میرے زخموں پر نمک پاشی نہ کرو میں اپنی بے خبری سے باخبر ہوں تم میرے دوست ہو تمہاری حرمت کا قائل ہوں صرف ایک بات کا جواب دو مجھے کہ تم آخر بہادری کے بارے میں کیا جانتے ہو یا جو جلیل نے کہا ہے وہ جانتے ہو
ये बात सच नहीं है। काफी अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरे भाई बहादुरी ने ये नहीं कहा कि ख्वाब देखा है कि जलील ने इसका हक खाया है, बल्कि बदजबानी की है और कहा है कि जलील ने जानबूझकर बिल्डिंग का काम रुकवाया हुआ था। सुनी सुनाई के अलावा कोई दलील भी नहीं है इसके पास।
इस पर जलील ने तुमसे कहा कि जाओ और सुनगुन लो, किस कीमत पर हाजी काजिम? एक और इमारत या फिर एक और फर्म?
लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। मैं चलता हूँ। क्या कहूँ तुम्हारे भैया को? अपनी जिंदगी को नाबूद करने के वास्ते अपनी बातों पर डटे हुए हो?
नहीं, मैं तुम्हें जहमत में नहीं डालना चाहता। सिर्फ ये कहना कि उनका भी एक खुदा है, वो आसमान से जमीन पर गिरा सकता है और जमीन से आसमान पर ले जा सकता है।
जनाब, आज तो हर दूसरा आदमी खुदा की बातें करता है। हर एक ये सोचता है कि खुदा उसके साथ है, लेकिन ये तो कयामत में पता चलेगा खुदा किसके साथ है। और ये तो बरोज़े कयामत ही पता चलेगा कि किसके साथ क्या होता है।
हाजी, पुराना मानना एक नसीहत सुनते जाओ। वो जो मेरी तरह बेखबर है और वो लोग भी जो तुम्हारी तरह बाखबर हैं, थोड़े से अंधे हैं। मेरी तरह और तुम्हारी तरह के लोग एक सिक्के के दो रुख हैं। अपने देरीना दोस्त से सुनते जाओ कि अब अगर तारीकी से गुजर हो और कोई रोशनी का मंबा ना हो तो चराग हिदायत साथ लेते जाओ, ताकि फिर कभी यह ख्याल तक ना आए कि नहीं जानते।
नमाज रोजा कबूल हो इंशाल्लाह।
वाह दादा जान, आपके मेहमान चले गए, इफ्तार पे नहीं रोका आपने।
इफ्तार कर लिया और गए।